एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे गहरे और मैं कहूंगा सदियों पुराने सवाल में गोता लगाने वाले हैं जो हम सबको कभी ना कभी जरूर परेशान करता है।
हाँ बिल्कुल, ये सवाल कि क्या हम वाकई अपनी मर्जी के मालिक हैं।
वही बात, आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट केन द्वारा संपादित पुस्तक फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा के बारे में। और देखिए, ये सिर्फ कोई दार्शनिकों के दिमागी कसरत नहीं है।
सही बात है। सोचिए जरा, हमारे कानून, हमारी नैतिकता की समझ,
हमारे आपसी रिश्ते, उनमें भरोसा, जिम्मेदारी की भावना,
यहाँ तक कि जीवन का अर्थ, ये सब कहीं ना कहीं इसी सवाल से तो जुड़ा है
कि क्या हम सचमुच अपने फैसले खुद लेते हैं या हम बस किसी अदृश्य डोर से बंधी कठपुतलियां हैं।
और आज ये सवाल और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है ना।
बिल्कुल, एक तरफ हमारी अंदरूनी आवाज है जो कहती है हाँ ये तो मैंने ही चुना,
और दूसरी तरफ विज्ञान है, खासकर न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान, जो दिखाते हैं कि हमारे फैसलों पर कितना कुछ असर डालता है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता।
दिमाग की अपनी प्रक्रियाएं, बाहरी हालात, तो क्या हमारी आजादी महज एक भ्रम है?
रॉबर्ट केन की ये किताब इसी उलझन को, इसी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करती है।
तो चलिए पहले इस किताब के संपादक रॉबर्ट केन के बारे में थोड़ी बात कर लें। वो कोई सिर्फ संपादक नहीं थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद इस विषय के एक बहुत बड़े विद्वान थे। ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर,
और दुनिया भर में उन्हें स्वतंत्र इच्छा पर, मतलब फ्री विल पर, सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में गिना जाता था।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उनका अपना एक मजबूत पक्ष था। वो लिबर्टेरियन विचारधारा के थे।
लिबर्टेरियन? इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब वो मानते थे कि हमें वाकई में सचमुच की स्वतंत्रता हासिल है, और अगर हमें सच्ची आज़ादी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया पूरी तरह से पहले से तयशुदा यानी डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकती।
अच्छा, यानी भविष्य में एक से ज्यादा रास्ते मुमकिन होने चाहिए।
बिल्कुल, और उन्होंने एक बड़ा ही मौलिक विचार भी दिया था, सेल्फ फॉर्मिंग एक्शंस या SFAs का।
SFAs, ये क्या है?
इसे ऐसे समझें कि जब हम जिंदगी में किसी मुश्किल नैतिक या व्यक्तिगत दुविधा में होते हैं, मान लीजिए दोस्त की मदद करें या जरूरी परीक्षा की तैयारी।
हाँ, ऐसे पलाते हैं।
तो केन कहते हैं कि ऐसे पलों में हमारे दिमाग में एक तरह की वास्तविक अनिश्चितता, इनडिटर्मिनेंसी पैदा होती है।
अनिश्चितता मतलब बस किस्मत का खेल?
नहीं नहीं, केन का कहना था कि इस अनिश्चितता को सुलझाने के लिए हम जो दिमागी जोर लगाते हैं, जो इच्छा शक्ति दिखाते हैं,
हाँ,
वो ही हमारे चरित्र को गढ़ता है। हम उस संघर्ष के जरिए चुनते हैं कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं।
अरे वाह, तो आजादी सिर्फ चुनने में नहीं, खुद को बनाने में भी है।
एग्जैक्टली, ये वाकई बड़ा गहरा विचार है।
बिल्कुल, और संपादक के तौर पर उनकी महानता भी यही थी, अपने इतने पक्के विचार होते हुए भी।
हाँ, उन्होंने किताब में विरोधी नजरियों को भी पूरी जगह दी, पूरी ईमानदारी से।
जैसे कंपैटिबलिज्म और हार्ड डिटर्मिनिज्म, उन्होंने कोशिश की कि पढ़ने वाले को इस पूरी बहस का एक नक्शा सा मिल जाए।
तो ये किताब आखिर है क्या? जैसा हमने कहा, ये एक संकलन है, एक एंथोलॉजी।
मतलब इसमें केन ने फ्री विल के मुद्दे पर दुनिया के कुछ सबसे अहम दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लेख जमा किए हैं।
हाँ, समझ लीजिए इस विषय पर हुई बहस का एक ग्रेटेस्ट हिट्स कलेक्शन।
इसका मकसद क्या है?
मुख्य उद्देश्य उस बुनियादी तनाव को समझना जो हमारी अंदर की भावना कि हम आज़ाद हैं और वैज्ञानिक समझ कि दुनिया कारण और प्रभाव के नियमों से चलती है के बीच है।
क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं, या विज्ञान हमारी आज़ादी की भावना को गलत साबित कर रहा है?
किताब इन्हीं सवालों के आसपास घूमती है कि भाई, स्वतंत्र इच्छा आखिर है क्या बला? क्या ये नियतिवाद के साथ मुमकिन है?
नियतिवाद यानी ये विचार कि अतीत और प्रकृति के नियम मिलकर भविष्य का सिर्फ एक ही रास्ता तय करते हैं।
हाँ, और अगर नियतिवाद के साथ मुमकिन नहीं, तो क्या हमारे काम सिर्फ किस्मत या संयोग है? और सबसे बड़ी बात, इन सब सवालों से हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है?
तो किताब मुख्य रूप से तीन बड़े खेमे दिखाती है ना?
बिल्कुल। पहला, कंपैटिबलिज्म। ये मानते हैं कि फ्री विल और नियतिवाद दोनों साथ चल सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं।
दूसरा,
लिबर्टेरियनिज्म। ये कहते हैं नहीं भाई, साथ नहीं चल सकते, और क्योंकि हमारे पास सच्ची स्वतंत्रता है इसलिए नियतिवाद गलत है। केन खुद इसी खेमे के थे।
और तीसरा,
हार्ड डिटर्मिनिज्म या स्केप्टिसिज्म। ये भी मानते हैं कि दोनों साथ नहीं चल सकते, लेकिन इनका निष्कर्ष उल्टा है। ये कहते हैं कि नियतिवाद शायद सच है, इसलिए स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है।
तो किताब को एक जवाब नहीं थोपती?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें बहस की जटिलता, अलग अलग तर्कों की ताकत, उनकी कमजोरियों और उनके नतीजों को समझने में मदद करती है, सोचने के लिए औजार देती है।
चलिए अब इन विचारों की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। ये बहस तो बहुत पुरानी है।
हाँ, प्राचीन यूनान तक जाती है। अरस्तु, स्टोइक सबने भाग्य और मानवीय चयन पर सोचा।
लेकिन आधुनिक विज्ञान के बाद, खासकर न्यूटन के बाद, जब लगा कि ब्रह्मांड एक मशीन की तरह नियमों से बंधा है,
तब नियतिवाद का विचार बहुत ताकतवर हो गया और सवाल और तीखा हो गया। अगर सब कुछ तय है तो इंसान की आजादी कहाँ है?
तो सबसे पहले बात करते हैं कंपैटिबलिज्म की। ये आज भी काफी लोकप्रिय है।
हाँ, क्योंकि इनका मूल तर्क सुनने में काफी सीधा लगता है। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब कारण से मुक्ति नहीं है।
तो फिर क्या है?
स्वतंत्रता का मतलब है बाहरी दबाव या जबरदस्ती से मुक्ति। अगर आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं अपनी मर्जी से,
तो आप स्वतंत्र हैं, भले ही वो चाहत खुद पिछले कारणों से तय हुई हो।
बिल्कुल। जैसे आपको कॉफी पीने का मन है, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा और आप पी लेते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। ये मायने नहीं रखता कि कॉफी पीने की इच्छा कहाँ से आई।
अच्छा, मतलब अंदरूनी इच्छा और बाहरी हालात।
हाँ, और इसके और भी विकसित रूप हैं, जैसे हैरी फ्रैंकफर्ट का विचार कि असली स्वतंत्रता सिर्फ अपनी पहली इच्छा पर काम करना नहीं,
बल्कि ये चाहना भी है कि आपकी इच्छाएं वो हों जो आप चाहते हैं कि वो हों। सेकेंड ऑर्डर डिजायर।
सही। जैसे कोई शराबी शराब पीना तो चाहता है, पर वो ये भी चाहता है कि उसे शराब पीने की इच्छा ही ना हो। फ्रैंकफर्ट कहेंगे वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है।
दिलचस्प। और जॉन मार्टिन फिशर का भी जिक्र था, रीजन रिस्पॉन्सिवनेस।
हाँ, कि जिम्मेदारी के लिए जरूरी है कि हमारा फैसला लेने का तरीका तर्क के प्रति संवेदनशील हो। मतलब अगर हालात या कारण अलग होते तो क्या हम अलग फैसला लेते?
अगर हाँ तो हम जिम्मेदार हैं, भले ही उस पल नियतिवाद सच हो।
एग्जैक्टली। तो कंपैटिबलिस्ट कहते हैं स्वतंत्रता और नियतिवाद में दोस्ती मुमकिन है।
लेकिन हर कोई ये दोस्ती नहीं मानता।
यही आता है दूसरा बड़ा खेमा, इनकम्पैटिबलिज्म। इनका सीधा कहना है भाई कंपैटिबलिज्म की बातें ठीक है, पर ये असली आजादी नहीं है।
इनका मानना है कि स्वतंत्र इच्छा और नियतिवाद एक साथ नहीं चल सकते, या तो एक सच है या दूसरा।
बिल्कुल, चुनना ही पड़ेगा। और इनका सबसे मजबूत तर्क है पीटर वैन इनवेगन का परिणाम तर्क।
हाँ, वो थोड़ा मुश्किल सा लगा था।
आसान भाषा में समझे, अगर नियतिवाद सच है तो आज मैं जो कर रही हूँ
वो करोड़ों साल पहले की घटनाओं और प्रकृति के नियमों का अनिवार्य नतीजा है।
सही। अब ना मैं अतीत बदल सकती हूँ ना प्रकृति के नियम।
तो फिर उनके नतीजों को, यानी अपने आज के कामों को कैसे बदल सकती हूँ?
बिल्कुल। मतलब अगर नियतिवाद सच है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पास अन्यथा करने की क्षमता नहीं है।
ये तर्क तो काफी ठोस लगता है।
हाँ, अब इस इनकम्पैटिबलिज्म के अंदर दो रास्ते हैं।
पहला कौन सा? लेकिन ये स्वतंत्रता को चुनते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि हमें अपनी आज़ादी का इतना गहरा एहसास है, हमारी नैतिकता इसी पर टिकी है, इसीलिए स्वतंत्रता सच होनी चाहिए।
तो इसका मतलब नियतिवाद गलत होगा।
बिल्कुल। ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी स्तर पर वास्तविक अनिश्चितता होनी चाहिए जो हमें खुले विकल्प दे।
लेकिन फिर वही सवाल, अगर हमारे काम तय नहीं है तो क्या वो सिर्फ रैंडम है, संयोग?
यही इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मेरा फैसला सिर्फ दिमाग में किसी कण के उछलने से हुआ तो वो मेरा फैसला कैसे हुआ? वो तो किस्मत हुई।
अनिश्चितता से स्वतंत्रता कैसे?
यहीं पर रॉबर्ट केन का SFS वाला विचार आता है। वो कहते हैं कि ये अनिश्चितता हर छोटे काम में नहीं,
बल्कि सिर्फ मुश्किल नैतिक दुविधाओं में होती है।
हम अपनी इच्छा शक्ति लगाकर उसे एक दिशा देते हैं
और उस कोशिश के लिए हम जिम्मेदार होते हैं।
सही। तो स्वतंत्रता न पूरी तरह नियति है न पूरी तरह संयोग, बल्कि इच्छा शक्ति से किया गया संघर्ष।
ये दिलचस्प व्याख्या है। और दूसरा, लिबर्टेरियन नजरिया,
एजेंट कॉजालिटी। हाँ, वो थोड़ा और रहस्यमय है। वो कहता है कि कर्ता यानी हम खुद नई कारण श्रृंखलाएं शुरू कर सकते हैं। घटनाओं की वजह सिर्फ पिछली घटनाएं नहीं,
मतलब हम कारण बनते हैं।
हाँ, सुनने में अच्छा है पर वैज्ञानिक तौर पर समझाना मुश्किल है।
ठीक है, अब इनकम्पैटिबलिज्म का दूसरा रास्ता,
वो है हार्ड डिटर्मिनिज्म, या जिसे आजकल ज्यादातर फ्री विल स्केप्टिसिज्म कहते हैं, स्वतंत्र इच्छा पर संदेह।
ये भी मानते हैं कि स्वतंत्रता और नियतिवाद साथ नहीं चल सकते।
हाँ, वैन एंड वेगन से सहमत। लेकिन ये लिबर्टेरियन से उल्टा नतीजा निकालते हैं।
कैसे?
ये कहते हैं कि विज्ञान, खासकर भौतिकी, न्यूरोसाइंस हमें यही दिखाता है कि दुनिया काफी हद तक नियमों से बंधी है या हमारे नियंत्रण से बाहर के कारकों से चलती है।
तो ये नियतिवाद को ज्यादा सच मानते हैं?
हाँ, या कुछ वैसा ही। इसलिए इनका निष्कर्ष है कि अगर नियतिवाद सच लगता है तो फिर स्वतंत्र इच्छा, कम से कम वो वाली स्वतंत्रता जो जिम्मेदारी के लिए जरूरी है, वो हमारे पास नहीं है।
ये सिर्फ एक भ्रम है, भले ही बहुत मजबूत भ्रम हो।
बिल्कुल, गैलन स्ट्रॉसन का बेसिक आर्ग्यूमेंट भी इसी तरफ इशारा करता है।
वो क्या कहता है?
वो कहते हैं कि आप किसी काम के लिए नैतिक रूप से तभी जिम्मेदार हो सकते हैं जब आप उसके पीछे जो आपका चरित्र या मानसिक स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार हो।
ठीक है,
लेकिन आप अपने चरित्र के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? उसे तो आपने नहीं बनाया, वो आपके जीन्स, परवरिश, अनुभवों का नतीजा है।
और उन चीजों को हमने नहीं चुना।
सही, तो अगर आप अपने चरित्र के मूल रचयिता नहीं हैं, तो आप अपने कामों के अंतिम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं?
ओहो, तो ऑसन के हिसाब से सच्ची नैतिक जिम्मेदारी मुमकिन ही नहीं है।
तार्किक रूप से असंभव। ये विचार काफी बेचैन करने वाला है।
बिल्कुल, तो ये हो गए मुख्य दार्शनिक खेमे। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं, विज्ञान ने भी इसमें दखल दिया है।
हाँ, खासकर बेंजामिन लिबर्ट के प्रयोग 80 के दशक में बहुत हलचल मचाई थी उन्होंने।
क्या थे वो प्रयोग?
लिबर्ट ने लोगों से कहा कि जब मन करे कलाई या उंगली हिलाएं और नोट करें कि उन्हें ऐसा करने का इरादा ठीक किस पल हुआ। साथ ही उनके दिमाग की गतिविधि रिकॉर्ड की।
और नतीजा?
नतीजा चौंकाने वाला था। काम करने के सचेत इरादे से लगभग आधा सेकेंड पहले ही दिमाग में खास गतिविधि, रेडीनेस पोटेंशियल शुरू हो जाती थी।
आधा सेकंड पहले? इसका मतलब?
कुछ लोगों ने कहा सबूत मिल गया, हमारा फैसला हमारा चेतन मन नहीं, हमारा अचेतन दिमाग पहले ही कर लेता है।
और हमारा इरादा बस बाद में आता है, जैसे दिमाग हमें कहानी सुना रहा हो कि मैंने किया।
हाँ, अगर ये सच है तो हमारी सचेत इच्छा तो ड्राइविंग सीट पर है ही नहीं।
लेकिन इस पर तो बहुत बहस हुई होगी।
जबरदस्त, और आज भी जारी है। क्या ये प्रयोग वाकई उस तरह की स्वतंत्र इच्छा को खारिज करते हैं जिसके बारे में दार्शनिक बात करते हैं?
आलोचक क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि प्रयोगशाला में उंगली हिलाना बहुत ही सरल काम है, क्या ये जिंदगी के बड़े सोचे समझे फैसलों पर भी लागू होता है?
शादी करना, नौकरी बदलना,
इन पर?
हाँ, और क्या रेडीनेस पोटेंशियल वाकई फैसला है या सिर्फ तैयारी? बहुत से वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि लिबर्ट के प्रयोगों से स्वतंत्र इच्छा खत्म मान लेना जल्दबाजी है। और मनोविज्ञान, उसका क्या कहना है?
मनोविज्ञान भी दिखाता है कि हमारे फैसलों पर कितने सारे अनजाने कारकों का असर होता है। हमारे पूर्वाग्रह, हमारा मूड, यहाँ तक कि कमरे का तापमान भी, ये सब हमारी एजेंसी, हमारी स्वायत्ता पर सवाल उठाते हैं। तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या निकलते हैं? पहला तो साफ है,
नियतिवाद की दुविधा, हमारी आजादी की भावना और विज्ञान की कारण कार्य वाली तस्वीर के बीच का टकराव।
हाँ, क्या इनमें तालमेल हो सकता है या एक को चुनना ही होगा?
दूसरा, ये कि स्वतंत्रता के मायने अलग अलग हो सकते हैं। कंपैटिबलिस्ट का मतलब अलग है, इनकंपैटिबलिस्ट का अलग।
बिल्कुल, हम स्वतंत्रता से क्या समझते हैं इसी पर सब कुछ टिका है।
तीसरा और शायद सबसे अहम, नैतिक जिम्मेदारी का सवाल, ये पूरी बहस के केंद्र में है।
हाँ, तारीफ, सजा, गुस्सा, माफी, इन सब का आधार क्या है? अगर फ्री विल नहीं तो क्या ये सब बेमानी है? ये सवाल हमारे समाज की नींव हिला सकता है।
चौथा मुद्दा, विज्ञान और दर्शन का रिश्ता, क्या विज्ञान इन पुराने सवालों का अंतिम जवाब दे सकता है?
या विज्ञान सिर्फ नई जानकारी देता है पर मूल वैचारिक सवाल बने रहते हैं? लिबर्ट के प्रयोगों पर हुई बहस यही दिखाती है। डेटा की व्याख्या भी मान्यताओं पर निर्भर करती है।
और पांचवा,
व्यवहारिक परिणाम, कुछ लोग कहते हैं शायद ये उतना जरूरी नहीं कि फ्री विल सच में है या नहीं, ज्यादा जरूरी ये है कि इसमें विश्वास करने के फायदे नुकसान क्या है।
क्या ये समाज चलाने के लिए एक जरूरी भ्रम है?
हो सकता है, लेकिन ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अक्सर लोगों को उनकी मुश्किल परिस्थितियों को देखे बिना जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार ठहरा देते हैं,
खासकर हमारे जैसे देश में जहाँ सामाजिक आर्थिक हालात बहुत मायने रखते हैं।
बिल्कुल,
किताब में कई विचार ऐसे हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं, कुछ मुख्य विचारों को फिर से देखें।
हाँ, एक तो रॉबर्ट केन की वो बात कि फ्री विल का सवाल ये है कि क्या हम अपनी कहानी के सिर्फ पात्र हैं या लेखक भी, क्या हम अपने कामों के अंतिम स्रोत हैं?
दूसरा, कंपैटिबलिस्ट नजरिया कि स्वतंत्रता मतलब कारणहीन होना नहीं बल्कि बाहरी मजबूरी के बिना अपनी इच्छा और तर्क से काम करना, एक तरह का आंतरिक नियंत्रण।
तीसरा, वैन एंड वेगन के परिणाम तर्क की चुनौती। अगर सत्य है तो हम अतीत और नियमों के गुलाम हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं। ये कंपैटिबलिज्म को सीधी चुनौती है।
और चौथा, गैलन स्ट्रोसन का वो बेचैन करना वाला विचार कि सच्ची नैतिक जिम्मेदारी शायद तार्किक रूप से ही असंभव है, क्योंकि हम खुद को शून्य से नहीं बना सकते।
हाँ, हम हमेशा अपने अतीत के उत्पाद होते हैं। ये सारे विचार सोचने पर मजबूर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इन सब भारी भरकम विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है।
हाँ, ये जरूरी है। वास्तविक जीवन में इनके क्या अनुप्रयोग हैं?
सबसे पहले तो आपराधिक न्याय प्रणाली। अगर लोग पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है तो सजा का मकसद क्या हो? सिर्फ बदला?
या समाज की सुरक्षा, अपराधी का सुधार और भविष्य में अपराध रोकना ज्यादा जरूरी है।
अगर हम मानते हैं कि लोगों के कामों पर उनके परिस्थितियों का बहुत असर होता है तो शायद हमें सजा के साथ सुधार और रोकथाम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
ये सोचना कि किसी ने चोरी क्यों की, भूख या लत।
बिल्कुल। दूसरा, हमारे आपसी रिश्ते। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हम गुस्सा होते हैं क्योंकि लगता है उसने जानबूझकर चुना। लेकिन अगर हम सोचें कि शायद वो तनाव में था या उसकी अपनी मजबूरियां थीं,
तो शायद गुस्सा थोड़ा कम हो, ज्यादा सहानुभूति आए।
इसका मतलब गलत को सही ठहराना नहीं, पर शायद समझने की बेहतर कोशिश करना।
इससे माफी देना भी आसान हो सकता है।
तीसरा, आत्म सुधार। हम सब बेहतर बनना चाहते हैं, पर क्या सिर्फ इच्छा शक्ति काफी है?
ये बहस सिखाती है कि शायद इच्छा शक्ति ही सब कुछ नहीं है। हमें अपने माहौल, अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा।
हाँ, और केन की तरह ये भी याद रखना कि मुश्किल वक्त के चुनाव ही हमें बनाते हैं, और असफल होने पर खुद पर थोड़ी नरमी बरतना भी जरूरी है।
आत्मकरुणा।
सही। और चौथा, अपनी उपलब्धियों पर हमारा नजरिया।
सफल होने पर गर्व करना तो ठीक है,
लेकिन ये याद रखना कि इसमें मेहनत के अलावा किस्मत, मौके, दूसरों का साथ, इन सब का भी हाथ है।
इससे हम ज्यादा विनम्र और कृतज्ञ बन सकते हैं।
बिल्कुल।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि स्वतंत्र इच्छा का सवाल हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है।
हाँ, कोई आसान हाँ या ना में जवाब नहीं है।
शायद जवाब जानने से ज्यादा जरूरी है इस सवाल के साथ सोचना।
विश्वासों का हमारी दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है।
हमारे खुद को देखने के तरीके पर, दूसरों को देखने के तरीके पर, समाज पर, न्याय पर।
हाँ, इसलिए इन विचारों को समझना बहुत जरूरी है। चाहे अंतिम सत्य कुछ भी हो, ये हमें थोड़ा विनम्र भी बनाता है ना?
बिल्कुल। ये दर्शन और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है जो हमें इंसान होने के मायने समझने में मदद करता है।
और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ, जरूर।
अगर ये सच है कि हमारी चेतन इच्छा हमारे सभी कामों की पूरी मालिक नहीं है और हम पर हमारे अतीत, हमारे अवचेतन, हमारी परिस्थितियों का इतना गहरा असर है,
तो फिर मैं या स्व का असली मतलब क्या रह जाता है?
हमारी पहचान कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म, और हमारी जिम्मेदारी की सीमाएं क्या हैं? सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।